تمني.
वो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
पात्रों का भेद का सब चर्चा हो गई, किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ,
नहीं तो फिर आगे
शंका नहीं, क्लियर है पूरा। चौथे गुणस्थान और पंचम गुणस्थान के पात्र जो महाव्रति है, वो कौन से पात्र हैं, इसका समाधान तो हो गया। कौन से पात्र हैं? स्थितिकरण के पात्र। लक्षण के आधार से हम किसी भी पात्र में रख नहीं सकते उनको, क्योंकि डेफिनेशंस हैं वो सभी, अपात्र को सुपात्र को पात्र, सबके अपने अपने डेफिनेशन हैं। उन डेफिनेशनों के अनुसार उनको बिठाना पड़ेगा, और कहीं भी नहीं बैठ सकते हो चौथे और पंचम गुणस्थान वर्ती, इसलिए वो स्थितिकरण के पात्र हैं। अभी एक प्रश्न उठा था कि द्रव्य से तो वृत्ति हो और भाव से वृत्ति ना हो, भावव्रत नहीं है द्रव्य व्रत है, तो इसको हम कैसे पहचाने? तो इतना तो पहचान सकते आप कि उनको जिन वस्तुओं का त्याग किया है वो परिग्रह 10 है, जिससे द्रव्य व्रत जीवन में आए हैं। वस्तु त्यागने से द्रव्य व्रत आते हैं, अपरिग्रह महाव्रत, बाह्य वस्तु के त्याग से बाह्य व्रत प्रकट होते हैं, वस्तु भी बाह्य तो व्रत भी बाह्य, और भाव अंतरंग होते हैं, भाव भी अंतरंग और कषाय भी अंतरंग, कषाय कोई वस्तु नहीं और भाव भी कोई वस्तु नहीं। तो भाव चारित्र के लिए कषाय भाव क्या है, इसको देखकर कषाय का निरोध करने से, उन कषायों का उपशमन आदि करने से, शोपशम आदि करने से या क्षय करने से भाव चारित्र प्रकट होता है। बस इतना ध्यान में रखना है कि कषाय भावों को जीतने से भाव चारित्र की उपलब्धि होती है, और वस्तु के परित्याग से द्रव्य चारित्र की उपलब्धि होती है। तो द्रव्य चारित्र शरीर आदि नहीं, यानी जिसको छोड़कर जैसे हम प्रवृत्ति करते हैं वो प्रवृत्ति शरीर आदि नहीं। जैसे परिग्रह को ले लिया, वस्तु को ले लिया, वो काय से ले लिया, शरीर से ले लिया, तो द्रव्य व्रत गया ना। द्रव्य व्रत गए, उसको नहीं रखना। वस्तु का स्वामित्व जब आता है, वस्तु को ग्रहण करके उसका मैं स्वामी बनूं, उसका अधिपति बनूं, वो मुझे आवश्यक है, ऐसे जब परिणाम होते हैं तो उन परिणामों में ही वस्तु परिग्रह की कोटि में आता है। जैसे इधर ये एक वस्तु रखी है, ये किसकी है? किसी की है, पर हमने स्पर्श किया तो मुझे परिग्रह का दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसके चोरी होने से या इसके होने से मुझे कोई हर्ष विषाद राग द्वेष आदि भाव इस वस्तु संबंधी नहीं है। तो ये वस्तु मेरे लिए तो वस्तु ही है, परिग्रह नहीं है, परंतु ये जिसका है उनको हर्ष विषाद राग द्वेष हो सकता है क्या? नहीं।
हाँ,
तो उनके लिए तो ये परिग्रह है, उनका परिग्रह हमको नहीं लगता। ऐसा हो जाए तो फिर हम जहां बैठे हैं ये तो आप लोगों का है और इसका स्पर्श हो रहा है और हम उपयोग भी कर रहे हैं, आपके मकान का उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रति मेरा कोई स्वामित्व भाव नहीं है। इसको मैं अपने नाम से बना नहीं सकता, और बनाने लग जाए तो क्यों महाराज, इसीलिए आए थे क्या पूछेंगे आप? अपने नाम से ये मकान कर ये धर्मशाला अपने नाम से बनाने के लिए आए थे आप? तो महाराज हैं, इसको लेके क्या करेंगे? ये तो महाराजों के रहने के लिए एक आवास दान की वस्तु है। दान की वस्तु तब तक ग्रहण की जाती है जब तक उसकी आवश्यकता है। आहार भी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण किया जाता है, फिर वह वस्तु हमारे पास हमेशा नहीं रहती, तात्कालिक दिया जाता है और हमेशा नहीं रहती वो वस्तु। तो ऐसी ये जो दिया है रहने के लिए आवास, तो ये हमेशा हमारे पास रहेगी क्या? नहीं। परंतु ये जिसके नाम से हो, समाज के नाम से है, तो यह आवास दान रूप परिग्रह का संबंध समाज के लिए है, साधु के लिए नहीं है। कोई संस्था है, संस्था, उसमें कमेटी होती है, समिति होती है, धार्मिक संस्था है, धर्म का ही कार्य करती है, उस संस्था में अच्छे अच्छे काम होते हैं और उसमें सभी परिग्रह का लेन देन भी रहता है, विकल्प रहते हैं संभालने संबंधी। तो ऐसे धार्मिक संस्था में यदि किसी साधु को ले लें, चलेगा क्या? महाराज आप भी इस कमेटी में रहो, तो संस्था की समिति में साधु शामिल हो जाए तो धर्म ध्यान जो चार प्रकार के होते हैं ना, आज्ञा विचे, अपाय विचे, विपाक विचे, संस्थान विचे, यदि हमको संस्था में ले लिया तो संस्था संस्थान विषय धर्म ध्यान जो है ना वो नहीं हो सकेगा। संस्था यानी क्या? सम्यक प्रकार स्वस्मिन,
हाँ
हाँ, अपने आप में रहना, अन्य की संस्था में, परिग्रह की संस्था में नहीं जाना, अपने आप में रहना, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान है। दूसरे की संस्था को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उस पर नजर डाल सकते हैं, उस समय में अपना ज्ञान, अपना ज्ञानोपयोग राग द्वेष हर्ष विषाद इत्यादि कर नहीं सकता। यदि समिति में प्रवेश करेंगे तो जवाबदारियां आएंगी, जवाबदारियां आएंगी तो उसमें हर्ष विषाद राग द्वेष आदि स्टार्ट होंगे, विकल्प पैदा होंगे। तो जो विकल्प पैदा होने लायक हैं, राग द्वेष आदि के निमित्त भूत हैं, उसमें नहीं जाएंगे तो ही संस्थान विषय धर्म ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसका नाम देखो, संस्था, संस्थान विचय, संस्था को अलग कर दो, न को अलग कर दो। संस्था नहीं है जिसके पास, उन्हीं को होता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्था नहीं है जिसके पास, उन्हीं के पास संस्थान है धर्म ध्यान, संस्थान धर्म ध्यान। तो संस्थान विचय, विचय यानी विचार करना, विचारों में हर्ष विषाद के बिना विचार होना, यह संस्थान विचय धर्म ध्यान। दिगंबर साधु देखो, पुद्गल पदार्थों में ममत्व भाव नहीं रखते, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान हो गया है, उसमें ममत्व भाव नहीं है। ममत्व भाव नहीं है तो दुनिया का जड़ और चेतन रूप जो दो पदार्थ दिखते हैं, उनके दृष्टि में वे कैसे दिखते हैं? पदार्थ हैं, बस इतने ही दिखते हैं। परंतु उनको देखते समय न हर्ष, न विषाद, न विकल्प, कुछ भी नहीं होता। कोई भी प्रतिकूल चेतन वस्तु या अचेतन वस्तु सामने आ गया तो उसको देख करके साधु को विकल्प होता ही नहीं, क्योंकि चेतन वस्तु से भी कोई मतलब नहीं और अचेतन वस्तु से भी मतलब नहीं। वस्तु मात्र से वो उपेक्षा करके उपेक्षा भाव से जीते रहते हैं, इसलिए उनकी निर्मलता अच्छी तरह से रहती है। और जो उनके उदय में जो संज्वलन कषाय होती है, वह संज्वलन कषाय भी हमेशा मंद रहती है, तीव्र नहीं होती, तो वहां पर शुक्ल लेशा होती है। एकदम उपेक्षा भाव से जिएंगे जड़ और चेतन के प्रति तो वहां पर लेशा शुक्ल होगी, और अपेक्षा भाव होंगे तो वहां पर लेशा बदल सकती है। जैसे साधु के पास दो तीन वस्तुएं रहती हैं, वो भी अचेतन वस्तु है, एक शास्त्र, एक पिंछी और एक कमंडलू, ये अचेतन है। तो इनको लेकर के कभी भी टेंशन नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं आना चाहिए। कैसा टेंशन? ये पीछे ठीक नहीं है, अरे ये तो अचेतन वस्तु है, ठीक रहे या कैसा भी रहे, टेंशन क्यों लेना? अगर ठीक नहीं है थोड़ा सा ठीक करके रखो, मन को क्यों बिगाड़ रहे हैं इतना? कषाय को तीव्र क्यों कर रहे हैं? ममत्व क्यों, ममत्व भाव को क्यों जगा रहे हैं? उसके प्रति हर्ष विषाद संकल्प विकल्प क्यों कर रहे हैं? मुझे उपकरण को भी लेकर के हर्ष विषाद नहीं करना है, ये साधु को ज्ञान रहता है। और यदि इस वस्तु के प्रति मूर्छा भाव हो तो संकल्प विकल्प होना शुरू होता है। पिंछी मेरे लिए उपकरण भी हो सकती है और परिग्रह भी, दोनों संभव है। क्यों? क्योंकि इस पिंछी का लेना जिस कारण से हुआ है वो कारण क्या है? जीव रक्षा, प्राणी संयम का पालन, जीव रक्षा, इसको उस उद्देश्य से लिया है। अब पिंछी नई बनी है और बिल्कुल नई है, पंख बहुत अच्छे हैं, नए हैं, कलर्ड हैं, सब डंडी अच्छी है, रस्सी अच्छी है, ये भाव आ गए। अब इसी की रक्षा में हम लग गए, जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। लगाएंगे तो घिस जाएगी, नहीं लगाना, लगाएंगे तो धूल लग जाएगी और काली पड़ जाएगी, नहीं, और ऊपर ऊपर से, नीचे नहीं लगाए, ऊपर ऊपर से, क्यों? धूल है वहां। तो ये कौन से भाव हो गए? ये पिंछी की रक्षा के भाव हो गए। तो ऐसे भाव परिग्रह कहलाते हैं। कितना बारीक है देखो, आप भी घर में अपने अपने बर्तनों को रखते हैं, उठाते हैं, सामान रखते उठाते हैं, जीव रक्षा के भाव रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो आपका बर्तन उपकरण है? देखो कुछ भी ले लो, लेकिन उस वस्तु के द्वारा हिंसा मत करो। तो लगभग वह उपकरण की तरह मानी जाएगी, किंतु उस वस्तु का राग रहता है इसलिए परिग्रह। वस्तु का राग रहता है, उसका अधिपतित्व रहता है, उसका स्वामित्व बुद्धि रहती है। बर्तन है, ठीक है, आप देख करके रख रहे हैं, अच्छी बात है, उपकरण की तरह जैसे हम पीछे रखते हैं वैसा ही आप भी रख रहे हैं। जीव जीव नहीं मर रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बर्तन आपके लिए उपकरण है। बर्तन को रखना उठाना ये जीव रक्षा के लिए आपने स्वीकार नहीं किया है। ये बर्तन मेरी रहेगी, ये मेरा ही रहेगा, इसलिए स्वीकार किया है, उसके ऊपर स्वामित्व बुद्धि रहती है। पर साधु को ऐसा नहीं, ये दान की वस्तु से आई है, इसको वो अपना समझते ही नहीं है, इस पर कोई स्वामित्व बुद्धि नहीं। स्वामित्व के बिना जिस कार्य के लिए लिया गया है उस कार्य को करना ये उपकरण कहलाता है। उपकरण की परिभाषा ऐसी, उपकरण को लेकर के ये पीछे हमारी तुमने क्यों ली, ये विकल्प हो गया। तो ये विकल्प होना जरूरी है क्या, मेरी तेरी भाव नहीं है। हमारी वो नहीं, ये है, वो पीछे हमारी है। तो हमारी कहने से भी वहां पर ममत्व आता है, तो इस ममत्व से भी बचते, इस ममत्व से भी बचना चाहिए। और टेस्ट करने के लिए किसी ने हमको, उन्होंने अपनी खराब पीछे रखी और हमारी अच्छी पीछे उठा ली, तो हम देखेंगे तो सही, अरे पीछे तो हमारी अच्छी थी और खराब कहां से आ गई। विचार तो आएंगे, आने के बाद हर्ष विषाद संकल्प विकल्प होने लग जाए तो ममत्व तो है या नहीं, ये इसका टेस्टिंग होता है, उसका टेस्टिंग होता है। परंतु ऐसा टेस्ट हमको आज तक किसी ने नहीं किया है, बताया हमने, ये कोई अनुभव में नहीं आया हुआ विषय भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब ये हमारे लिए वस्तु है, जैसे ये जहां जिस छाया में बैठे हैं, ये धर्मशाला क्या कहेंगे इसको, त्यागी निवास, त्यागी निवास है। तो त्यागी निवास को आप परमानेंट थोड़ी दिए हैं, नाम जरूर रखा है, ये क्या है, त्यागी निवास। तो त्यागियों के लिए दिया है क्या, नहीं दिया है। रजिस्टर में, आपके रजिस्टर में आपके संस्था से ही उसका, तो त्यागी निवास ये कहना कहां तक उचित है। त्यागी निवास है तो त्यागियों को देना चाहिए था, उनके नाम से कर देना था। हम त्यागियों, त्यागी निवास है तो त्यागियों के नाम से रहेगा। तो त्यागी अपने नाम से करवा के ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप अपनी संस्था में इस वस्तु को रखा है, जब जब त्यागी आएंगे तब तब देंगे, नहीं रहेंगे तो ये अपनी संस्था का रहेगा। यहां त्यागी आने के बजाय और कोई आकर के परमानेंट रहने लग जाए तो पांच छह कमरे हैं और पांच छह परिवार आकर के अस्थाई बस गए यहां, तो आपको विकल्प होगा क्या, नहीं। हमने तो त्यागियों के लिए बनाया था और यह लोग आकर के त्यागियों की, त्यागियों से भी बड़े होकर के परमानेंट रहने लगे, विकल्प होगा। तो इसके मालिक जो होता है उसको विकल्प होता है, त्यागी के यहां रहने मात्र से इसका विकल्प त्यागी को होता नहीं है, इसलिए आवास भी उनको उपकरण है, दान में दिया है ये उपकरण, जब तक हम रहेंगे तब तक वो आवास का यह वस्तु भी उपकरण है, ये भी उपकरण है, आहार भी उपकरण है। आहार किसका है? वो आपका, उसका स्वामित्व किसको था? आपको था। देने के बाद किसका हुआ? अपना हुआ। देने के बाद अपना हुआ तो हम दे करके कहीं स्टॉप तो नहीं कर रहे हैं उस दिन का, उस दिन उपयोग कर रहे हैं। और यदि बांध बूंद करके महाराज इसको भी रखो आगे आ जाएगा आपको कभी काम में कलेवा है अगले गांव में आ जाएगा ये उपयोग में। ऐसे महाराज को दे देते हैं और महाराज उसको ग्रहण करके रखते हैं या रखने के लिए बताते हैं, एक आगे काम में आ सकता है और रखो इसको बताते हैं, तो ये भी परिग्रह हो सकता है। परंतु ऐसा कभी साधु करते नहीं है। आहार वस्तु संबंधित तो नहीं करते, क्या करते हैं? आहार वस्तु भी साधुओं के साथ होती है क्या? नहीं। इसलिए रहता है आहार की वस्तु, वो तो श्रावक के हाथ में रहेगा ना, रहता है,
देखा है,
देखा है। साधु होकर उनके पास कैसे? फिर जो साधु होते हैं उनके पास नहीं होता, और जो साधु नहीं होते उनके पास होता है, तो उनको साधु कहे भी कैसे? कह भी नहीं सकते। यदि साधु जैसा वेश है और फिर ये सब है, तो क्या वहां उसको साधु कहें? नहीं कह सकते हैं ना। साधु के पास तो कुछ होता ही नहीं। साधु कौन? साधु की परिभाषा क्या है? जिनके पास कुछ नहीं है, निर्ग्रंथ, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसी यही परिभाषा है। और यदि है तो साधु नहीं, यानी परिभाषा में नहीं बैठ रहे हैं तो साधु भी नहीं है। तो उस अवस्था में वहां न तो द्रव्य व्रत रहेंगे न तो भाव व्रत रहेंगे। साधु के पास द्रव्य आ गया, चेतन अचेतन इत्यादि द्रव्य आ गया, तो द्रव्य व्रत नहीं रहेगा। और साधु के पास यदि द्रव्य के भाव आ गए, स्वामित्व बुद्धि आ गई, तो भाव व्रत नहीं रहेगा। सीधी बात, भाव व्रत को पहचानना और द्रव्य व्रत को पहचानना, कैसे पहचानना? तो साधु के योग्य जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को यदि साधु रखते हैं तो द्रव्य व्रति भी नहीं है। और साधु को जिस वस्तु को रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए, उनको रखा तो नहीं है, परंतु उन वस्तुओं के प्रति केवल राग भाव हो, मूर्छा भाव हो, उसको ग्रहण बुद्धि आ चुकी हो, ग्रहण करने की अपेक्षा हो गई हो, तो वहां पर भाव व्रत नहीं रहेगा, द्रव्य व्रत तो रहेगा। क्यों? वस्तु नहीं आई, वस्तु का उपयोग अभी नहीं हो रहा है, इसलिए द्रव्य व्रत रहेगा, केवल भाव व्रत नहीं रहेगा। तो प्रश्न किया था ना कि भाव व्रत, द्रव्य व्रत तो है पर भाव व्रतों को कैसे पहचाने, ऐसा प्रश्न आया था। तो भाव व्रतों को पहचानने के लिए भी क्या केवल ज्ञान चाहिए? ये कम से कम साधु को तो पता चल सकेगा क्या नहीं, कि मेरे पास भाव व्रत नहीं है। क्या वह भी अज्ञात भाव में रहते हैं कि आया है कि नहीं, क्या पता है? केवल ज्ञानी को पता है मेरा क्या है। ये भाव आदि हमारे अधीन रहते हैं कि केवल ज्ञान के अधीन रहते हैं? तो हमारी अनुभूति हमारे साथ रहेगी ना। हमको इतना ही देखना है कि पिंछी, कमंडलू, शास्त्र, जो जो उपकरण है उनको छोड़कर अनावश्यक परिग्रह को जो हमने त्यागा था, वो चेतन और अचेतन 10 प्रकार का परिग्रह, उसके प्रति मेरे को स्वामित्व भाव हो रहा है क्या नहीं, इच्छा भाव हो रहा है क्या नहीं छोड़ी हुई वस्तु में, ये क्या हमको पता नहीं चलेगा? चलता है। परंतु मैं अगर द्रव्यव्रति हूं तो ऐसा हूं ना द्रव्यव्रति, कि द्रव्यव्रत को नष्ट नहीं करना है। द्रव्यव्रत नष्ट होंगे तो वो 10 के 20 नहीं बनेंगे। द्रव्यव्रत गया तो सब गया, इसलिए द्रव्यव्रत को संभाल करके रखते हैं 10 का 20 करने के लिए। 20 नहीं 40 होता है वो, भाववृत्ति हो तो इनको तो 20 ही होना है। तो 10 का 20 करने के लिए द्रव्य व्रत को सुरक्षित रखते हैं, और भाव से तो, भाव संयम से तो वो शून्य है। द्रव्य व्रत कौन कौन से, देखो परिग्रह तो छोड़ा है, इसलिए पांचों महाव्रत, शेष 4 महाव्रत ऑटोमेटिक आ गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये अपरिग्रह, इसके रहने से ये 4 आ गए हैं। अगर इसको ग्रहण करो, परिग्रह परिग्रह ग्रहण करो, ये 4 टिकेंगे ही नहीं। परिग्रह रखते हुए अहिंसा का पालन संभव है क्या? नहीं, गया ये। परिग्रह रखकर सत्य बोलोगे क्या? संभव नहीं, ये भी गया। परिग्रह रखकर चोरी के भाव जाएंगे क्या? परिग्रह रखना ही चोरी है, क्योंकि वो पर वस्तु है, अपनी वस्तु नहीं। पर वस्तु का ग्रहण ही चोरी है महावृत्ति के लिए। आत्मानुभूति कब होती है? मैं हूं, मैं चेतन वस्तु हूं, और ये चेतन अचेतन बाह्य वस्तु एक जड़ है, एक चेतन है, ये पर वस्तु है दोनों मेरे लिए। तो पर वस्तु को उठा लेना, ग्रहण करना, ये क्या चोरी नहीं? अपनी वस्तु को उठाओ ना, अपनी वस्तु अपने में है, आप अपने सम्यक दर्शन को उठा लो, चोरी का दोष नहीं लगेगा। अपने चारित्र को उठा लो, चोरी का दोष नहीं लगेगा। बारीक डेफिनेशन है। डेफिनेशन बारीक है। अपनी वस्तु क्या, यही तो जीव को मालूम नहीं अनादिकाल से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपनी संपत्ति है, अपना धन है, इसको मुझे उठाना चाहिए और इसकी मुझे रक्षण करना चाहिए, इसकी सुरक्षा में लगे रहना चाहिए। परंतु हम इस संपत्ति को गौण करके हैं, इस संपत्ति से क्या पेट भरता है क्या, ऐसा कहकर जड़ वस्तु को ग्रहण करने के प्रति हम चले गए, तो परिग्रह तो आएगा ही आएगा। वो पर वस्तु है क्या स्व वस्तु है? आत्मा तो नहीं है ना वो। जो आत्मा है वो अपनी वस्तु है, और आत्मा में रहने वाले जो कुछ भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनंत गुण, वो अपने हैं। तो अपने आत्मा के भीतर रहने वाली वो असली संपत्ति, उसका मालिक बनना या उसको ग्रहण करना, उसको सुरक्षित रखना, ये असंयम का कारण नहीं बनेगा, यही संयम है। अपनी वस्तु को उठाकर सुरक्षित रखना ये संयम है, पर वस्तु को ग्रहण करना असंयम है। ऐसे महावृत्ति मुनि महाराज चिंतन करते हैं, सोचते हैं, इसलिए पर वस्तु को वो पर वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि पर वस्तु की अपेक्षा करूंगा तो लेऊंगा भी, ले लूंगा तो चोरी होगी, चोरी होगी तो अचौर्य महावृत गया। देखो 10 परिग्रह त्यागा है और उसी को लेने जा रहे हैं, ये चोरी नहीं क्या? अवश्य चोरी है। यही चोरी ना हो ऐसा इस प्रकार, इसलिए वे अपरिग्रह महाव्रती सर्वप्रथम बनते हैं। एक अपरिग्रह महाव्रत आने पर जीवन में और समस्त जड़ चेतन वस्तुओं का त्याग होने पर ये चार महाव्रत तो ऑटोमेटिक आते। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या है? आत्मा में जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है पर वस्तु चेतन और अचेतन, उसको अपना समझना ये भाव चोरी है, और उसको ग्रहण करना ये द्रव्य चोरी है। उसको ग्रहण करना ये द्रव्य चोरी है। द्रव्यव्रती मुनि महाराज द्रव्य चोर नहीं है, क्योंकि अपेक्षा करते ही नहीं हो, नहीं क्योंकि वस्तु रखते नहीं है, वो द्रव्य चोर नहीं है, हाँ ग्रहण नहीं करते, इसलिए द्रव्य चोर नहीं है वो। भाव चोर तो है, भाव चोर है, इसलिए भाव अचौरी महाव्रत चला गया है। भाव अचौरी महाव्रत गायब हो गया। और कर्म के संवर और निर्जरा में रत्नत्रय की उत्पत्ति में सबसे बड़ा सहयोग भावव्रत का रहता है। भावव्रत आए बिना तो रत्नत्रय प्रकट होता ही नहीं है। केवल द्रव्य से दूर रहने मात्र से आप रत्नत्रय प्रकट नहीं कर सकते। भावों में भी द्रव्य की अपेक्षा न होना, यह रत्नत्रय, इच्छा न होना। तो द्रव्य, इस प्रश्न का उत्तर यहां मिल जाता अपने को। भाववृत्ति को कैसे समझे? द्रव्यवृत्ति तो समझ में आते हैं कि उनके पास तो कुछ सामान है ही नहीं, कोई द्रव्य ग्रहण कर नहीं रहे हैं, पर अभ्यंतर में परभव की जो कामना है, इससे 20 बने, ये कामना किसको दिखाई देती? पर को तो किसी को दिखाई नहीं देती, पर मुझे तो दिखाई देती है ना। मैंने 10 को क्यों त्यागा मुझे तो मालूम है ना। 20 बनाने के लिए या 40 अपने आप आता है उसके लिए ये तो मुझे मालूम है। और केवल द्रव्यव्रति जो होते हैं उनको ये मालूम ही नहीं रहता है कि 40 अपने आप आता है, उसकी मांग की जरूरत नहीं। जड़ वस्तु लक्ष्मी अपने आप साथ चलती है। यदि आप अपनी अपेक्षा करेंगे, आप अपनी संपत्ति की अपेक्षा करेंगे, तो पर संपत्ति पर लक्ष्मी आपके साथ चलती है, परभव में भी आती है, क्योंकि उसी वक्त तो हमारे लिए साथी से पुण्य का बंध होता है ना। जब हम अपनी वस्तु से आसक्त रहेंगे, रत्नत्रय संपत्ति, हाँ ये असली संपत्ति है, इसमें जब हम आसक्त रहेंगे तब पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, और वही साथी से पुण्य हमको 40 बना देता है 20 की जगह। तो हमको तो सब आइडिया मालूम है ना, 40 पाना है कि 20 पाना है, और पाने की कामना है ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि पर वस्तु अपनी नहीं है तो उसको क्या ग्रहण करना और क्या त्यागना, वो ना त्याग के योग्य है ना ग्रहण करने के योग्य है। त्याग और ग्रहण करने का जो कुछ भी है वो यहां है, अपने आत्मा के भीतर जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, दुख देने वाली संपत्ति पड़ी हुई है, दुखदायी संपत्ति, उसको तो मुझे त्यागना है, वो भी अपने में ही है। और जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, असली संपत्ति है, उसको त्यागे बिना वो प्राप्त नहीं होती। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुग्धाई संपत्ति, इसको त्यागे बिना असली संपत्ति की उपलब्धि नहीं होती। तो मैं अपनी असली संपत्ति को पाने के लिए क्या करूंगा? जो वास्तव में मेरे पास दुखदायी संपत्ति है उस अपनी संपत्ति को त्यागूंगा। पर संपत्ति न ग्रहण करने लायक है न त्यागने लायक है। असल में त्यागने लायक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये क्यों है अपने में? अज्ञान के कारण। तो द्रव्य वृत्ति इसका ज्ञान नहीं रखता। वो उनको ये मालूम नहीं है, उनको यही मालूम नहीं है कि मैं सबकी अपेक्षा छोड़ूंगा तो 40 मिलेगा, और यदि वस्तु की पर वस्तु की अपेक्षा रखूंगा तो मुझे 20 ही मिलेगा। ये गणित मालूम नहीं रहता उसको, और उसको ये बताया जाए नहीं मांगने से 40 मिलता है तो तुरंत मांगना छोड़ देगा। लेकिन अपेक्षा पूर्वक छोड़ेगा। आसक्त किस में है? वो पर वस्तु में। लेकिन 40 मिलेगा ये कहने पर वो इच्छा मात्र से मुक्त नहीं हो सकता, वो 40 की इच्छा में अटकेगा। हाँ, 40 में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छा है। फिर ये कहेगा और उनकी इच्छा डबल हो जाएगी। 40 की आशा दिखाओगे, उनकी इच्छा डबल होके बैठ जाएगी। तो उस 40 की इच्छा से भी आप कुछ करने जाओगे तो भी भाव वृत्तों की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। बल्कि ये करनी पड़ेगी, न तो मुझे 40 चाहिए, न तो 80 चाहिए, न ही 20 चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी संपत्ति चाहिए, बस इतना। मैं अपनी संपत्ति का आसक्त हूं और मुझे अपनी संपत्ति मिले, और वह रत्नत्रय है। तो ऐसे रत्नत्रय धारी साधु के सामने जड़ वस्तु कुछ लगती ही नहीं। वो हमेशा उसके प्रति उपेक्षा भाव रहता है। उनके सामने आपने अच्छे से अच्छी चीज भी रख दो, उनको मोह नहीं होगा। क्यों? उतने गहराई में जाकर के अपनी संपत्ति का परिचय पा चुके हैं वो। ये संपत्ति ही असली संपत्ति है, उसको एक बार देखने के बाद फीकी संपत्ति के प्रति आशा जग नहीं सकती। ये जड़ वस्तु और चेतन वस्तु फीकी संपत्ति, कुछ भी नहीं है। ये तो शरीर के लिए है, हमारे लिए क्या है? कोई भी वस्तु शरीर के लिए है, जड़ वस्तु या चेतन वस्तु शरीर के लिए है या आत्मा के लिए? शरीर के लिए। उसको ग्रहण करने से ऐसा महसूस होता है कि आत्मा की संपत्ति मिल गई, मुझे अपनी संपत्ति मिल गई, ऐसा महसूस होता है? यही महसूस होता है कि मैं जो चाहता था वो वस्तु मिल गई, पर वस्तु। यही अनुभव होता है। पर वस्तु को लेकर के अपनी वस्तु प्राप्त हो गई है, ऐसा अनुभव किसको होता है? किसी को नहीं होता। अगर हो भी जाए तो फिर वहां भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर वस्तु को ही अपनी वस्तु अगर मान रहा है, मुझे अपनी वस्तु मिल गई, खुश हो रहा है, तो उसको भेद विज्ञान नहीं है। और जिसको भेद विज्ञान है वो भी कह सकता है मुझे ये वस्तु खो गई थी आज मिल गई, ये वस्तु खो गई थी आज मिल गई, वो खुश नहीं होता। यही भेद विज्ञान है। ये वस्तु जो खो गई थी फीकी थी, ये असली वस्तु नहीं थी, पर मेरी जरूर थी। व्यवहार में तो ये मेरी ही कहलाएगी, निश्चय में तो मुझे पता है कि मेरी वस्तु कौन सी है। निश्चय में तो रत्नत्रय ही मेरी वस्तु है, और व्यवहार में ये वस्तु जड़ वस्तु ये व्यवहार से मेरी है, निश्चय से मेरी नहीं है। और जो व्यवहार से मेरी होती है और निश्चय में मेरी नहीं होती, उस वस्तु को लेकर के मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी मेरा जीवन में एक सहयोगी वस्तु है, इसलिए ये मेरी वस्तु मैं कहता हूं, ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। मूर्छा भाव नहीं रहता उसके प्रति, क्योंकि मूर्छा भाव सब कुछ कहां है, उस मूर्छा भाव को परमुखी जो मूर्छा भाव था उसको स्वमुखी कर दिया, बस इतना ही अंतर किया। स्वमुखी मूर्छा भाव उनको अपनी रत्नत्रय पर मूर्छा है, ये अपनी वस्तु अपने को मिले और उसमें मूर्छा भाव रख करके उसको पाने के लिए जब आप एक बार जाएंगे, उसके लिए एक बार मोर्चा निकालेंगे मूर्छा भाव से, हमको ये होना, मूर्छा निकालो, तो मिल भी सकती है वो, लेकिन इसके लिए हमने एक बार भी न मूर्छा निकाला न उससे मूर्छित हुई, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। देखो इतना तो ध्यान में रखो कि अपना क्या है और क्या नहीं है, आप सभी भव्य जीव बैठे हैं यहां, और अपना क्या है और क्या नहीं है इतना क्या मालूम नहीं करा सकते अपन, करा सकते हैं, इसी का नाम भेद विज्ञान है। अपना क्या है क्या नहीं है इसका निर्णय कर लेना, इसका नाम भेद विज्ञान है। इतना तो कर लो पहले, भले ही आप व्यवहार से उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसके संबंध में आपको आर्द्र उद्र ध्यान विकल्प आदि थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं, परंतु ये तो पता रहे कि ये जड़ वस्तु और चेतन वस्तु पर वस्तु है, ये पर वस्तु कभी अपनी हो नहीं सकती, न हुई है न होगी न है, इतना तो ज्ञान हो जाए। इतना अगर ज्ञान हो गया तो अपनी वस्तु के प्रति विचार करने के लिए रास्ता खुलेगा, धीरे धीरे हम सोच भी सकते हैं कि फिर ये वस्तु अपनी नहीं है तो फिर अपनी वस्तु कौन सी, विचार तो आएगा, विचार करने के लिए कोई मार्ग तो बनेगा, और उस मार्ग पर आरूढ़ होकर के यदि हम अपनी वस्तु की पहचान कर उसमें आसक्त तो होंगे तो उसको पाने के लिए मोर्चा निकालेंगे ही निकालेंगे, एक न एक दिन मुझे चाहिए ही, तो वह व्यक्ति महाव्रती बनता है। महाव्रती बनने के लिए जब चल पड़ता है तो वो मोर्चा निकाल करके जा रहा है कि मुझे वो मिलना चाहिए और इसलिए मैं जा रहा हूं, सब कुछ पर वस्तु को पर वस्तुओं से मुख मोड़ करके उसके तरफ पीट करके मैं अपने तरफ जा रहा हूं, मैं दीक्षा ले रहा हूं, इसका अर्थ मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने आप में आ रहा हूं। तो इतना सबको हो जाए तो कितना अच्छा होगा, सब लोग आरिका बन जाएंगे, सभी लोग मुनि बन जाएंगे, निकालो मोर्चा एक दिन, और मोर्चा भी उसी दिन निकलेगा जब तक जब आपको तीव्र वैराग्य नहीं होगा, जिस दिन तीव्र वैराग्य होगा मोर्चा निकाल करके आप चल पड़ेंगे अपनी संपत्ति को पाने के लिए, अपनी अंतरंग यात्रा शुरू करेंगे, और ये करना ही है। देखो ना पर वस्तु में कितना मूर्छा भाव, उपदेश सुनते समय भी आवश्यक है इतना मूर्छा भाव उसके साथ, कम से कम एक घंटा छोड़ के आते घर में ये भी नहीं, कितना मूर्छा भाव हो उससे, मूर्छा उधर निकाल रहे क्या इधर निकाल रहे जब देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं सत्संग करने, वहां शिक्षा लेने जाते हैं कि हे भगवान मैं दुनिया को भूलकर आपकी भक्ति गुणानुवाद करने आ रहा हूं, आप अपनी निज संपत्ति से संपन्न हो गए हैं उसका चिंतन करने आ रहा हूं, उन गुणों की स्तुति करने आ रहा हूं, उन गुणों में अनुराग रखकर उनको भी वैसा ही मुझे भी उन गुणों को प्राप्त करना है, इस भाव से आ रहा हूं, ये कह करके मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाते समय में भी कोई संसार के विकल्प के कारणीभूत जेब में मोबाइल है, गाड़ी है, चप्पल है, मंदिर जा रहे हैं और चप्पल चाहिए, मंदिर जा रहे हैं और गाड़ी चाहिए, मंदिर जा रहे हैं और मोबाइल भी जेब में चाहिए। तो पर वस्तु की अपेक्षा रखकर भगवान के पास जाने से क्या फायदा, कोई लाभ होगा, लाभ पहुंचेगा आत्मा को, नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से केवल क्रियाकांड के धर्म को हमने कितनी बार किया, अनादिकाल से अनंत बार किया है, लेकिन भावपूर्ण क्रियाकांड एक बार भी नहीं किया। भावात्मक क्रिया हमारी एक बार भी नहीं हुई। यस्मिन क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कौन सा एक स्तोत्र आता है ना, कल्याण मंदिर स्तोत्र में, उसमें कहा है भाव शून्य क्रियाएं फलीभूत नहीं होती। और भाव शून्य क्रियाएं क्या हैं, तो यही भाव शून्य क्रियाएं हैं, हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसा जाना चाहिए, यही हमको विवेक नहीं है, तो ये भाव शून्य हो गया। क्रिया तो हो रही है ना, हो रही है, कहां जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उपदेश सुनने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, स्वाध्याय करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो जेब में मोबाइल की क्या जरूरत है, आपको गाड़ी की क्या जरूरत है, पैदल यात्रा करो, ये भावपूर्ण क्रिया है तीर्थ यात्रा। मंदिर पास में है, बाजू में है और चप्पल लेके जा रहे हैं, चप्पल पहन करके जा रहे हैं, तो ये भाव शून्य क्रिया है, क्रियाकांड है केवल। मुझे भगवान के पास जाना है तो संसार की कोई भी वस्तु जो विकल्प का कारण बन सकता है उसको मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान। क्योंकि चप्पल ले आओगे तो आज ही कल के दिन बाजार में खरीद करके आज पहन करके मंदिर आ गए और वो नए थे और वहां पर किसी ने उनके चप्पल पहन करके ले जाना चाहिए था, उसने क्या किया, रुको इन मजा करेंगे, उन्होंने नए चप्पल पहन लिया और पुरानी चप्पल छोड़ के चले गए और सभी लोग मंदिर दर्शन करके चले गए, अपने अपने चप्पल पहन करके चले गए, एक जोड़ी चप्पल वहां है जो व्यक्ति छोड़ के चला गया, नया पहन करके चला गया। तो आपको कितना विकल्प हो गया, कल के दिन ही खरीदे थे और आज चले गए चप्पल, कितना विकल्प होता है, आर्द्र उद्र ध्यान शुरू हो गया कि नहीं। तो कहते हैं भगवान के पास जब जाते हैं तब आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान हुआ, तो आर्द्र रौद्र ध्यान से बचने का स्थान कौन सा दुनिया में, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म के क्षेत्र में आकर के आर्द्र रौद्र ध्यान शुरू हो गया तो फिर वहां मंदिर में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति कठोर कर्मों का बंद करेगा क्या, नरम कर्मों का बंद करेगा, कठोर निदत्ति निकांचित भी बंद होते हैं, इससे ज्यादा संकलेश हो गया तो निदत्ति और निकांचित भी बंद हो सकता है। मोबाइल ले गए हैं तो मोबाइल भी विकल्प का कारण बनेगा, ये मुझे कौन फोन कर रहा है, और नंबर देख लिया, हाँ इनका फोन है, क्या हो गया, स्विच दबा दिया, सुन लिया आपका वह व्यक्ति मर गया है, शुरू हो गए मंदिर में ही आर्द्र रौद्र ध्यान शुरू हो गए, पर मंदिर में ही रोना शुरू करेगा वो। और अगर इसको नहीं ले जाते तो मंदिर से बाहर निकलने तक कम से कम रौद्र ध्यान आर्द्र ध्यान नहीं होता, वहां पर का पाप कर्म का बंद नहीं होता। हमको क्रियाकांड करते समय क्रियाकांड किस ज्ञान से, विवेक ज्ञान से करना, ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है,
इसलिए तो हम
पूरे भो चले गए, वहीं जहां का तहां हम बैठे हैं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य क्रियाएं वो फलीभूत नहीं हो सकती। भाव शून्य का मतलब विवेक शून्य, करते समय ये मैं क्रिया कर रहा हूं पूरा विवेक रख करके करना चाहिए, इसका चिंतन नहीं करते। ये समझते हैं कि आज मंदिर जाकर के आऊंगा ना पूरा फल मिलेगा ही इतना गारंटी लेकर के आते हैं, और उस गारंटी के साथ चप्पल भी नए हैं और मोबाइल भी जेब में है और फिर भी गारंटी ले रहे हैं, कैसा फल मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैसे करेंगे? उपदेश सुनने आ रहे हैं या देव दर्शन करने आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो हर समय इन परिग्रह के वस्तु जो हमारे आर्त रौद्र ध्यान के कारणीभूत हैं, उनको सब घर में छोड़ करके जाना चाहिए महाराज। फिर मोबाइल भी नहीं ले जाएंगे तो घर में कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा, अनहोनी हो गई तो कौन बताएगा वहां से, तो तीर्थ यात्रा क्यों जा रहे हैं? क्या होगा ये मोह को साथ लेकर के जा रहे हैं, घर का क्या होगा, उनका क्या होगा, समाचार देता रहेगा अच्छे हैं अच्छे हैं इसको सुनने के लिए तो ले जा रहे हो ना, और इसको सुनना नहीं चाहिए। धर्म क्रिया करते समय संसार की क्रियाओं को सुनना नहीं चाहिए, और यही हमसे नहीं होता, क्रियाएं होती हैं। तीर्थ यात्रा अवश्य हम करेंगे लेकिन मोबाइल लेकर के ही करेंगे, उसके बिना तो हम क्रिया कर ही नहीं सकते। तो उस क्रिया को करना नहीं करना बराबर ही है ना, करने पर भी कोई फायदा नहीं और नहीं करने पर भी कोई फायदा नहीं। हाँ जाते ये बात अलग है कि कहीं सिद्ध परमिष्टि को फोन करके पूछना हो कि हे भगवान, सिद्ध परमिष्टि का नंबर मालूम है आपको 1008 और हमारे पास भी मोबाइल रहता है, संयम का मोबाइल, और उसका नंबर है 1 से 8 संयम ही मोबाइल है और उसका नंबर है 1 से 8 108 दबाओ तो हमको फोन आएगा। उस उद्देश्य ले जाओ कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो मुनियों की ही केवल जानकारी लेंगे हम, वो महाराज कहाँ है, ये महाराज कहाँ है, घर वाले कहाँ हैं, घर वाला वाले का फोन आ गया तो उन्हें उठाना, ले जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल रहने दो, तीर्थ यात्रा करते समय रहने दो, मंदिर जाते समय रहने दो, स्वाध्याय करते समय रहने दो, लेकिन केवल महाराजों के लिए मोबाइल ले जाना, महाराजों की जानकारी के लिए, फिर कोई परिग्रह नहीं हो, आर्त रौद्र ध्यान कराएगा नहीं। मोबाइल से महाराज की जानकारी लेना है और हमको आर्त रौद्र ध्यान हो जाए, ये कभी संभव है क्या? लेकिन महाराजों के लिए फोन कौन ले जाता है मंदिर तीर्थ यात्रा, घर वालों के लिए ही ले जाते हैं ना। तो इसलिए आर्त रौद्र ध्यान वहां होता है। इसलिए धर्म क्या है, आर्त रौद्र ध्यान से बचने का एक माध्यम है। आर्त रौद्र ध्यान से बच के रहना अधिक से अधिक टाइम तक, घंटे डेढ़ घंटे, दिन चार दिन, महीने, आर्त रौद्र ध्यान से बचो, ये धर्म है। और उस धर्म का साधन है क्रिया, तीर्थ यात्रा। एक महीने के लिए गए तो एक महीने तक आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, तो इसके लिए क्या करना, घर वालों के उद्देश्य से मोबाइल नहीं ले जाना, और उसमें जितने भी नंबर्स हैं, अगर घर वालों की तरफ से, परिग्रह वालों की तरफ से, असंयमियों की तरफ से नंबर आ रहे हैं, घंटी बज रही है, मैसेज आ रहा है, तो उठाना नहीं, देखना नहीं, विकल्प नहीं करना। और महाराजों का यदि कोई समाचार आ रहा है, लेकिन हम देखो मोबाइल तो रखते हैं, 108 नंबर हमारा मोबाइल का नंबर है, परंतु इस मोबाइल नंबर पर आपके पास हमारा फोन नहीं जाता, ये दिक्कत है। और उधर से दबाओगे, उधर से भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मोबाइल ऐसा है कि किसी के रेंज को ग्रहण ही नहीं करता वो।
कर्नाटक में एम्बुलेंस वालों का नंबर, एम्बुलेंस आ
गई, एम्बुलेंस आ गई। हमारा मोबाइल आपके मोबाइल के रेंज को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अपना जो मोबाइल है उसका कोई ऐसा टावर नहीं बना अभी तक कि आपके दबाने से वहां से यहां आ जाए। उसका टावर ही नहीं बना और बना भी नहीं सकते। हम इस मोबाइल से, अपने मोबाइल से सिद्धों को भी फोन नहीं लगा पा रहे हैं। ये सिद्ध भगवान, हम तो संयमी बन गए, हमारे पास संयम का मोबाइल है, और आप कहां हैं, जरा मैसेज तो दो, हमको उधर ही आना है, नहीं लगता, क्योंकि उसका टावर नहीं बना। उसका टावर ही नहीं है तो मैसेज कैसे जाएगा। तो ये मोबाइल ऐसा मोबाइल है जैसे बच्चों के हाथ में खेलने के मोबाइल होते हैं, उट्यों ट्यों 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 बजता तो है लेकिन उसकी रेंज नहीं जाती, ऐसा मोबाइल। तो समझ में आ गए ना, धर्म ध्यान करते समय जब धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, कोई भी देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा इत्यादि कर रहे हो, दान दे रहे हो, दान में प्रवृत्त हो, तो उस समय आपके मोबाइल में से वो अंदर का बैटरी निकाल करके रखना, तो न आएगा न जाएगा। स्विच ऑफ करके नहीं रखना, वो फिर भी कुछ ना कुछ ट्यों ट्यों करता ही रहता, पता नहीं क्या है उसमें सिस्टम, हमको तो मालूम नहीं। स्विच ऑफ करने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई आवाज आती है, आती कि नहीं आती? नहीं आती,
बाद में बताएगा, बाद में बताएगा किस किस ने फोन किया।
हाँ हाँ,
बाद में बताएगा जब फोन करोगे।
उसके तो चिपक कर पड़ेगा, स्विच ऑफ करके।
हाँ अच्छा,
तो रहने
वाला, लेकिन विकल्प रहेगा किस किस ने मैसेज दिया, उनका मैसेज आया क्या नहीं आया।
ऑन करोगे तो बताएगा।
हाँ, ऑन करेंगे तो ये बताएगा, लेकिन बैटरी अगर निकाल के रखेंगे
तभी बताएगा।
ऑन करने के बाद फिर बताएंगे,
ऑन करने के बाद फिर बताएगा। वो ऑफ का समान है, बैटरी निकाल दी मतलब ऑफ हो गया,
ऑफ हो गया
बताएगा वो। अगर आपने
तो फिर मैसेज आता है,
मैसेज नहीं आएगा।
हाँ, फिर
आप ऑन करेंगे।
हाँ,
तब आपको आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बताएगा कि ये मैसेज आया, ये कॉल इस दौरान आपको आई।
नहीं, कॉल कैसे आएगा, बैटरी निकाल के रखा है एक घंटे तक, उस समय मैसेज आ भी नहीं सकते, अब जा भी नहीं सकते।
आपके सर्विस प्रोवाइडर को मालूम है किस किसने आपको कॉल किया,
बाद में आता है ना बैटरी डालने के बाद।
अच्छा, डालने के बाद तुरंत आ जाएगा,
वो बताएगा आपको,
वो फिर रुका रहता है कहीं।
हाँ, वो कंपनी वाले के पास रुका रहता है।
अच्छा, ये मालूम नहीं था। अरे यार, वो तो
लाइन सुविधा लेनी पड़ती
है। अच्छा, फैसिलिटी है,
ये सुविधा लेनी पड़ती है, समय उपलब्ध नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कम से कम इतना तो करना चाहिए।
ऑफ कर दो, घंटी नहीं बजेगी,
घंटी नहीं बजेगी। सभी लोग सुन रहे हैं? जब भी प्रवचन सुनना हो, आज संडे का दिन था, दो लोगों का नीचे बज गया, इतना बोर्ड लगा करके भी, इतना लिख करके भी, सब व्यर्थ जा रहा है वो, उसका फॉलो करना चाहिए ना। हाँ, बाहर से आए हुए लोगों से हुआ है, लेकिन बाहर के लोगों को बोर्ड नहीं दिखा होगा। वहां गेट पर ही एक बोर्ड लगा हुआ है, आते जाते समय ही अनभिज्ञ लोग उसको पढ़ करके स्विच ऑफ बंद करके आ जाएं, इसलिए बोर्ड लगाया है। जिनको पता है वो तो नहीं ले आ रहे। यहाँ के लोग तो बिल्कुल सावधान हो गए, एक की भी घंटी नहीं बजती। और धर्म ध्यान ऐसा हो बहुत गड़बड़ है।
अभी भी सब सभी देख लो, किसी के पास होगा तो स्विच ऑफ करके रखो,
नहीं आता है किसी किसी को, नहीं आता है किसी किसी को, वो भी नहीं आता है। जिसको स्विच ऑफ करना नहीं आता है उनको लाना ही नहीं चाहिए, घर में रख करके आना चाहिए। स्विच ऑफ करना भी नहीं आता और शुरू भी करना नहीं आता, ऐसे लोगों से बहुत दिक्कत डिस्टर्ब हो जाता है।
हाँ,
क्या हो गया था, प्रश्न था कि द्रव्य व्रति महाव्रति भाव व्रत को धारण करने वाले नहीं हैं, भाव व्रत से रहित हैं। उस भाव व्रत को कैसे समझे, है क्या नहीं, तो द्रव्य व्रति के पास ही जाना पड़ेगा। द्रव्य व्रति का मतलब पांच महाव्रति, अहिंसा महाव्रति, सत्य महाव्रति, अचोरी महाव्रति, ब्रह्मचर्य महाव्रति और अपरिग्रह महाव्रति। दूसरे नंबर का महाव्रत कौन सा है, सत्य। द्रव्य महाव्रति अगर वचनों से असत्य बोलेंगे तो उनका द्रव्य महाव्रत चला जाएगा, और ये चला जाएगा तो वो जो 20 मिलना था 10 का उसमें कमी आएगी, उनको ये भय रहता है। क्योंकि द्रव्य व्रत का दोष है वो झूठ है ना, कुछ झूठ बोलेंगे तो उसमें कमी आएगी, और चार महाव्रत इतने पुण्य बढ़ाने वाले नहीं रहेंगे। तो उनके पास जाया जाए, इतना ही पूछा जाए, महाराज आपने दीक्षा क्यों ली है। मेरा कहने का मतलब महाराज मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप आत्म कल्याण के लिए लिए हैं या स्वर्ग आदि सुख जो इंद्रिय जनित सुख है उसकी उपलब्धि के लिए लिए हैं, ऐसा पूछेंगे तो उनको कोई बुरा भी नहीं लगता। जिनको कि स्वर्ग आदि सुख में ही इंटरेस्ट है बुरा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे तो ऐसा पूछेंगे तो इनको बुरा ना लग जाए, नहीं बुरा लगेगा ही नहीं। जब मेरा लक्ष्य एक है उसी बात को जब व्यक्ति पूछ रहा है तो हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। वो स्पष्ट कहते हैं कि मैंने स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति के लिए ही लिया है। आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना, उनको बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे सत्य महाव्रत गया, और बताएंगे तो सत्य महाव्रत की रक्षा हो गई। द्रव्यव्रति है, द्रव्यव्रति क्यों है, कहीं ना कहीं अपेक्षा है, परभव की अपेक्षा या इह भव की, इह भव की अपेक्षा तो हो नहीं सकती, परभव की अपेक्षा रहेगी। या यूं हो सकता है ख्याति लाभ पूजा की अपेक्षा रह सकती है, तो वो भी सच सच बताएगा, वो मुझे ख्याति चाहिए, मुझे प्रशंसा चाहिए, मुझे बड़प्पन चाहिए सबके बीच, इस प्रकार के भाव। ये भाव महाव्रत को नष्ट करते हैं। लक्ष्य आत्म कल्याण का नहीं है, लक्ष्य कषायों से निवृत्ति पाने का नहीं है, लक्ष्य ये है कि जो चाहिए वो भौतिक है, ख्याति लाभ पूजा के ये परमार्थ है, भौतिक है ना, और ये भी तो इंद्रिय विषय है ना, ख्याति से क्या होगा, मन की संतुष्टि क्षणिक, एक क्षणिक मन के लिए संतुष्टि, वाय वाय होगा एक मिनट के लिए, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, और उतने में आनंद आ गया। और इसी आनंद को बार बार पाने के लिए, इस ख्याति के लिए अगर महाव्रत को ग्रहण किया है तो भौतिक महाव्रत है, पारमार्थिक महाव्रत नहीं है, लेकिन है महाव्रत। उनको ये पूछो कि आपको ख्याति चाहिए क्या, आपको पूजा चाहिए क्या, कोई लाभ चाहिए क्या, परभव में लाभ, ई भव में लाभ, लाभ चाहिए क्या? हाँ, हमको यही चाहिए, इसीलिए तो लिया है हमने। परमार्थ को वो जानते ही नहीं, इसलिए उसमें लगाव है। परमार्थ को जानते नहीं है इसलिए उनको विकल्प नहीं होगा। परमार्थ को भी जानते हैं और भौतिकता को भी जानते हैं, और परमार्थ से मैं अलग हो गया हूं और परमार्थ में मैं हूं क्या नहीं आप पूछ रहे हैं, तो मुझे विकल्प होगा। मैं परमार्थ में हूं क्या नहीं ये पूछने आया है, इसलिए मुझे विकल्प भी हो सकता है, लेकिन उनको विकल्प नहीं होगा, क्योंकि परमार्थ का ज्ञाता वो है नहीं, वो सर्वथा भौतिक सुख को ही जानते हैं। या तो इह भव में ख्याति लाभ पूजा की अपेक्षा रहती है, या तो परभव में इंद्रिय विषयों की अपेक्षा रहती है, वो इंद्रिय विषयों की अपेक्षा वो लाभ में आता है। क्या चाहिए, इसका लाभ चाहिए। किसका लाभ, नौवे ग्रवेक का जो सुख होता है, वहां तक भी एक बार जाके आना है, मुझे देख करके आना है, नौ ग्रवेक में किस प्रकार से इंद्रिय विषय होते हैं वो लाभ, उसका लाभ पाना चाहता है, तो इसी का नाम लाभ। ख्याति मने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यहां की भी हो सकती है, वहां की भी हो सकती है। वहां जाऊंगा तो अहमेंद्र रहूंगा और सबके बीच ख्याति रहेगी कि अरे वो व्यक्ति तो अहमेंद्र बन गया, वो व्यक्ति तो अहमेंद्र इंद्र से बड़ा तो उसमें एक आनंद है, उसमें एक रस है, उसमें एक रसानुभूति है, वो उनको रस आता है उसमें। जो परमार्थ का ज्ञाता नहीं है ना, जिनको आत्मा के प्रति अपेक्षा नहीं है, आत्मा का रस मालूम नहीं है, आत्मा का सुख मालूम नहीं है, उसमें रस आता है। रस तो कहीं ना कहीं आएगा। अपना श्रुतक ज्ञान उपयोग इतना गड़बड़ है कि अगर आप परमार्थ का उसको ज्ञाता बनाकर परमार्थ में नहीं लगाते हैं तो भौतिकता में उसको रस आता ही रहता है। भौतिकता में निश्चित रस आएगा। और भाववृत्ति हो तो वो नीरस होते हैं और ये सरस बनते हैं। परमार्थ सरस सरस बनता है और भौतिकता नीरस हो जाती है। तो भौतिकता में जिसको रस है उनको आपने ये जाकर के पूछा, महाराज आपने ये महाव्रत का बहाना क्यों बना लिया, तो सत्य तो बोलना पड़ेगा। सत्य अगर नहीं बोलते हैं तो महाव्रत जाएगा, महाव्रत जाएगा तो वो बीस जाएंगे, अव्रति हो जाएगा। द्रव्य से जो व्रत है वो भी गया तो पूरा अव्रति हो जाएगा, और अव्रत से तो वो बीस मिलने वाला नहीं है। मालूम होता है, शास्त्र में पढ़ने मिलता है या किसी ने कह दिया तो ऐसे ऐसे महाव्रत इसका ऐसा पालन करेंगे शारीरिक रूप से और बिल्कुल कट्टर रहेंगे, कुछ ग्रहण नहीं करना, ऐसा करोगे तो नवग्रह का तुम अधिकारी बनोगे, अहमेंद्र बनोगे, ऐसा कोई भी समझा सकता है ना, कोई भी समझा सकता है। ये तो अपन भी समझा सकते हैं, परमार्थ को नहीं समझाना इसको। आओ यहां बैठो, हम बताते हैं, नवग्रह का सुख तुमको कैसे मिलता है, सब छोड़ो दस परिग्रह और कठोर तपस्या करो, ग्रहण नहीं करना, ये बाह्य संयम धारण कर लो, इससे जीवों की हिंसा भी नहीं होती, उसका भी पुण्य लाभ होगा और उस पुण्य का लाभ वही है। और इसको पालन करोगे वर्तमान के इंद्रिय विषय छूट जाएंगे, और इंद्रिय विषय छूट गए तो उसका जो पुण्य आएगा वो उसका भी फल अहम इंद्र है, अहम इंद्र बनने का है। चाहते हो क्या पूछेंगे, परमार्थ का ज्ञान नहीं देंगे, उसी का ज्ञान दे करके उनको लोभ जगाएंगे, तो जो लोभी होगा वो लोभ में पड़ ही जाएगा, कोई भी समझा सकता है, ये कोई कठिन बात नहीं। या खुद ही व्यक्ति कहीं से ऐसा पता लगाया और ऐसा करने से ऐसा होता है तो उसके लिए तुम बनती ही हैं, साधना करती ही हैं, और ऐसी साधना यदि करे तो ज्यादा से ज्यादा नवग्रह तक जा सकते हैं, अनुदिशों में उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनुदिशों में केवल सम्यक दृष्टि भाववृत्ति ही उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि भाववृत्तियों का ही वहां उत्पन्न होना संभव है। नवग्रहविक नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान, इनमें जो उत्पन्न होते हैं जीव वो नियम से महावृत्ति होते हैं, नियम से भाववृत्ति होते हैं, और उनका जो पुण्य होता है सातिशय होता है, सातिशय पुण्य का फल है वो नवग्रहविक का अहमेंद्रपना, नव अनुदिश का पांच अनुत्तर विमान का अहमेंद्रपना, वो सातिशय पुण्य का फल है, और निरतिशय पुण्य का फल है नवग्रहविक लास्ट। अब स्वर्ग कितने हैं, 16 स्वर्ग, उसमें लौकांतिक देवों का स्वर्ग कितने नंबर पर है, पांचवें में। अब वो लौकांतिक देव भी नहीं बन सकेंगे, पांचवें स्वर्ग में नहीं जाएंगे जहां लौकांतिक देवों का उपपाद है, वहां जन्म नहीं ले सकती है, क्योंकि द्रव्य वृत्तियों का उपपाद वहां नहीं है। द्रव्य वृत्तियों का उपपाद कहां कहां नहीं है तो कहते हैं वैसे तो सब जगह है, लेकिन लौकांतिक देवों को छोड़ो, इंद्र पद नहीं पाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, यहां नीचे पहले स्वर्ग से नवग्रहविक तक 16 स्वर्ग तक, इसमें कहां कहां जाएगा, इंद्र नहीं बनेगा, वो भाववृत्ति ही इंद्र बनता है, और लौकांतिक देव भी भाववृत्ति ही बनता है, लौकांतिक देव भी, हाँ प्रतिंद्र भी नहीं बन सकेगा, इंद्र प्रतिंद्र
सभी बारह इंद्र प्रतिंद्र की बात कर रहे हैं केवल,
हाँ सभी हाँ सभी बारह इंद्र प्रतिंद्र, ये सब नियम से सम्यक, हाँ सम्यक दृष्टि बनते हैं।
नौवे ग्रहविक में भावलिंगी महाराज भी जा सकते हैं,
नौवे ग्रहविक में
भावलिंगी महाराज भी जा सकते हैं,
हाँ जा सकते हैं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि रहेंगे,
सम्यक दृष्टि रहेगी, हाँ
ना, भावलिंगी पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक
जा सकते हैं,
कहीं भी जा सकते हैं, और द्रव्यलिंगी
सम्यक दृष्टि
भावनात्रिक से लेकर स्वर्ग से नहीं,
अवनित्रिक से लेकर,
हाँ स्वर्ग तो ऊपर है, भावनात्रिक नीचे भी है,
वहां समय दृष्टि नहीं,
वहां नहीं सम्यक दृष्टि भी है ना,
है पर जाते नहीं,
सम्यक दृष्टि मनुष्य भावनात्रिक में नहीं जाता, नियम है, सम्यक दृष्टि मनुष्य भवनवासी देव नहीं बनता, व्यंतर नहीं बनता, और ज्योतिषी नहीं बनता, इन पर्यायों में नहीं जाता, नियम से वैमानिक देव बनेगा, और सम्यक्त्व को लेके जा रहा है, इसलिए पहले स्वर्ग में भी जन्म लेना संभव है, और सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी जा सकता है। अब इसमें
दुर्गति देव आयु भी नहीं पाएगा।
दुर्गति देव
वो जो फिल्म से टाइप,
हाँ
हाँ वो भी नहीं बनेगा,
वो भी उस पर्याय में भी नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि, जो वाहन देव होते हैं स्वर्ग में, उस पर्याय में नहीं जाएगा। अब उस पर्याय में कौन जाता है? अगर मान लो यह द्रव्य व्रत धारण करने वाला यदि वैमानिकों में भी चला गया तो वाहन देव भी बन सकता है। मूलाचार में बहुत सारी जगह इसका उल्लेख है कि वह आवियोग्य नाम के आवियोग्य जाति के देव बन सकता है। जैसे मंत्र तंत्र आदि परिग्रह को धारण करने वाले महाव्रती, महाव्रती कैसे कहें उसको, मंत्र तंत्र तो वैसे परिग्रह है, विद्या है, मंत्र तंत्र है, इनको परिग्रह माना है, ये परिग्रह है। इस परिग्रह को रखने वाले साधु आवियोग्य जाति के देव बन सकते हैं, क्योंकि
भी जा सकते हैं,
क्योंकि ये कुतप करते हैं, कुतप करते हैं असयम अवस्था में रहकर। भाव असयम तो होता ही है, परंतु मंत्र तंत्र परिग्रह है, पर कुतप करते हैं, उपवास करना, तपस्या करना, यानी आश्रव पूर्वक इनकी निर्जरा होती है, और एक तरफ से पुण्य भी बढ़ता है। उस पुण्य के फल स्वरूप भवनत्रिक में न जाकर वैमानिक देवों के अंदर जो आभियोग्य आदि पर्याय हैं, उन पर्यायों में भी जन्म ये लेते हैं।
इन महाविद्युओं के लिए कुहोक भूमि भी लिखा है, वहां भी जा सकते हैं। हाँ। मंत्र तंत्र का परिग्रह धारण करते हैं वो कुहोक भूमि में भी जा सकते हैं,
कुहोक भूमि में भी जा सकते हैं। हाँ। चाहते हैं इस वो उत्तर पता चल गया आपको जो बहुत समय से था मन में। पांच बजी गए दस मिनट और देखो, दस मिनट और की इच्छा हो गई। इसको कहते हैं आसक्ति, ये यहाँ की आसक्ति है। पांच बज गया तो उसका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं हुआ, यहाँ की आसक्ति बढ़ गई। इसको कहते हैं धर्म ध्यान, इसको कहते हैं संवर निर्जरा, इसको कहते हैं सच्चे मन की एकाग्रता, इसको कहते हैं पाप का संवर और पुण्य का आश्रव, इसी को कहते हैं परम विशुद्धि, सच्ची विशुद्धि, यथार्थ विशुद्धि। ऐसा ही रहना चाहिए, संभालो अपने परिणामों को, होगा कल्याण। मत समझो पंचम काल है क्या होगा, हम ऐसे समझेंगे तो मुनि काय को बनते, पंचम काल में कुछ हो सकता है इसलिए तो मुनि बन गए। अगर नहीं होना, होने की संभावना ही न होती, और भगवान अगर कहते कि पंचम काल में तो धर्म रहने वाला नहीं है और मुनि बनना संभव नहीं है, तो हम प्रयास ही नहीं करते इस ओर। हम प्रयास क्यों कर रहे हैं? भगवान की वाणी है कि पंचम काल में भी अंतिम समय तक मुनि रहेंगे, पंचम काल खत्म होने तक मुनि रहेंगे। पंचम काल खत्म होने को 3 साल 8.5 माह शेष जब रहता है तब तक मुनि रहेंगे, खत्म होने को इतना शेष रहता है, इतना जब शेष रहता है तब उस अंतिम मुनि की समाधि मरण होगा। तो पंचम काल में मुनि नहीं होते ये धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी ये है कि मुनि होंगे। तो होंगे तो हमको तो अनुभव आ ही रहा है उसका, हम है क्या नहीं उसका, उसमें हमको तो अनुभव आ ही रहा है। हमको कोई ख्याति लाभ पूजा भौतिक कामना कुछ भी नहीं है, हमको अपनी निधि का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो निधि में हमको मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, वही स्वास्थ्य है हमारा। अन्यथा पर वस्तुओं की अपेक्षा ये अस्वस्थपना है, बीमारी है, क्या परिग्रह की अपेक्षा रखनी? अनंत काल से रखा है उससे कुछ हुआ, असली सुख मिला, स्थाई कुछ बना? स्थाई तो है ही नहीं, पर से उत्पन्न जो सुख होता है वो स्थाई नहीं होता है, वो साधी शांत होता है। और ये आत्मा का जो सुख होता है ये साधी अनंत होता है, साधी अनंत होता है, यही पता लगने पर अपन ने तो प्रयास किया कि अपने को साधी अनंत को पाना है, ये क्षणिक क्षण स्थायी सुख को क्यों पाएं? तो ऐसे विचारों से यदि दिगंबर दीक्षा लेते हैं तो सच्ची दीक्षा क्यों नहीं हो सकती? आज हो सकती है, करने वाला चाहिए, भटकना भी अपने हाथ में है और नहीं भटकना भी अपने हाथ में है। हमको क्या करना, कौन सा मार्ग अपनाना, ये अपने हाथ में रहता है। कुछ भी नहीं है, निर्विकल्प बन जाओ और पर वस्तु को पर समझो और निज वस्तु को निज समझो। निज वस्तु में जो निज संपत्ति है, रत्नत्रय है, वो उसके पीछे पड़ो, उसी में सुख है। पर वस्तु तो देखो मरण के काल में भी छूटने वाले हैं, एक परमाणु भी साथ नहीं आने वाला। विग्रह गति में जाते समय थोड़े परमाणुओं को मुट्ठी भर करके ले जाओ, उस समय अपनी मुट्ठियां भी खाली होती हैं और ले जाने के लिए आपको हाथ नहीं रहता। शरीर रहित जाते हैं ना, कार्मन शरीर रहता है, हाँ, और वो कार्मन शरीर आपका हाथ नहीं, आपका साथ जरूर है वो, पर आपका हाथ नहीं। और वह कार्मन शरीर क्या चीज है? यहां जो हमने धर्म किया, वो किया, ये किया, हमको हाथ से लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो पुण्य कहता है, यहां क्यों इसकी अपेक्षा करते हो, मैं साथ हूं, चलो। पुण्य स्वयं साथ जा रहा है, उसको हमने रोका नहीं, उसको बंधन में नहीं डाला पुण्य को। वो पुण्य जो बंधा है वो साथ ही चलेगा, कार्मन शरीर है वो। आठों कर्मों का समुदाय कर्मन शरीर, उसमें पुण्य भी है और पाप भी है। तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से जीवों को धन संपत्ति आदि का लाभ होता है। कौन सी धन संपत्ति? पर धन संपत्ति, चेतन अचेतन वस्तुओं का लाभ ही धन संपत्ति है। वो किस पुण्य के उदय से होता है? ये संपत्ति का लाभ किस पुण्य के उदय से होता है? नहीं, साता कर्म तो सुख देता है, हाँ, लाभांतराय कर्म का ये क्षयोपशम है और अंतराय कर्म पाप है। पाप प्रकृति है या पुण्य प्रकृति? लाभांतराय कर्म पाप प्रकृति, पाप कर्म के क्षयोपशम से धन संपत्ति की उपलब्धि होती है। अन्यथा धन संपत्ति को दिलाने वाला कोई पुण्य कर्म है ही नहीं। आपको धन मिला, आपको कार गाड़ी मिली, आपको अच्छा परिवार मिला, चेतन अचेतन वस्तु उपलब्ध हो गए, ये किसकी देन है? कौन से पुण्य की देन है? लाभांतराय कर्म का क्षोभशम है, ये किसी पुण्य के कारण से नहीं आ रहा है, ये पुण्य का फल नहीं है, ये लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम का फल है। लेकिन कहने में क्या आता है, क्या पुण्य का फल मिला है उसको, क्या किया होगा पुण्य? पुण्य नहीं किया है उन्होंने, अंतराय कर्म के क्षयोपशम को पूर्व भव में भरपूर बढ़ा के रखा है, क्षयोपशम को बढ़ा के रखा है। और ये अंतराय कर्म का क्षोभशम कैसे बढ़ता है? दान देने से, सुपात्रों में दान देने से, दुखी जीवों के दुख को दूर करने से, पर जीवों की रक्षा करने से, पर जीवों को अभय दान देने से अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। और पर जीवों की हत्या करने से, निर्दयी होकर सांसारिक क्रिया करने से, कषाय करने से लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ने के बजाय क्षयोपशम ही नष्ट होता है, घटता है। जिसको वर्तमान में भरपूर संपत्ति मिलती है, पूर्व भव में उन्होंने ऐसा काम किया है जो मिली संपत्ति को सदुपयोग किया, उपकार में लगाया है, किसी के ऊपर दया की है, दान के रूप में दिया है, इसलिए वो ज्यादा मिल गई है। और इस भव में जो मिली है इसमें आसक्त होगा, दान नहीं करेगा, तो वो क्षोभशम घटेगा, और क्षोभशम घटेगा तो परभव में जाकर के क्या बनेगा, एक साहूकार बनने के बजाय एक भिखारी बनेगा, एक भिखारी बनेगा। जीव भिखारी बनता है, क्यों, जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता, परोपकार नहीं करता, दान नहीं देता, दान देने वालों को भी रोकता है, विघ्न करता है, तो ऐसे जीव को लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम घटता 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 शून्य हो जाता है, और ये जीव मर करके किसी अन्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय में या देवगति में जन्म लेता है, तो वहां पर भी संपत्तिहीन होकर के जन्म लेता है। सब कर्म का खेल है, जीव को कर्म खेला देता है और जीव कर्म के साथ खेलता है, अपने परिणामों के अनुसार कर्मों का आश्रय और बंध होता है। इसलिए अपने कर्मों परिणामों को कैसे रखना, योग्य रखना, योग्य ने शुभ रखना, शुभ ने दान देना, दया करना, उपकार करना, कषाय कम करना, तो अंतराय कर्म का क्षोभशम बढ़ेगा। यही मोक्ष मार्ग है, भगवान ने इसी को करने के लिए बताया है। पर ऐसा भाव मत रखो कि मुझे क्षयोपशम बढ़ाने से संपत्ति मिलती है तो भरपूर दान दूंगा, तो ये और घाटा है। तो इसका क्षयोपशम ज्यादा नहीं होगा, कम रहेगा। कामना आ गई, कामना कषाय है, कषाय के कारण से अंतराय कर्म का क्षोभशम जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ न बढ़ करके थोड़ा बढ़ेगा और वहां स्टॉप हो जाएगा। तो ये कामना भी नहीं करना, उपकार करना, सब करना, लेकिन उसके पीछे कोई भी कामना रख करके नहीं करना, तो इससे अंतराय कर्म का क्षोभशम बढ़ता है। और उसी क्षोभशम का नाम है सातिशय क्षयोपशम, और उस सातिशय क्षोभशम के कारण से जो संपत्ति मिलती है वो संपत्ति पुण्य का फल है। पुण्य का फल मतलब क्षयोपशम ही पुण्य है। क्षोभशम के काल में क्योंकि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है और अंतराय कर्म का क्षोभशम बढ़ता है, इसलिए इसको उपचार से ही पुण्य कहा है। क्षयोपशमिक भाव पुण्य बंध का कारण होने से, यानी क्षोभशमिक भाव कैसा, दान देने के भाव दे रहा है, देने के भाव है, एक क्षोभशम के कारण से हो रहा है। क्षयोपशम पूर्व से आया है, ये गिफ्ट है वो, पर इस गिफ्ट का सदुपयोग करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा और क्षयोपशम अंतराय कर्म का और बढ़ेगा, तो इसको पुण्य का फल कहते हैं। तो वो उपचार कथन है, बाकी संपत्ति का जो लाभ होता है, एकत्रित होता है हमारे पास, बिन मांगे लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी पीछे पड़ गई है, ये किसका फल है, उस व्यक्ति का अंतराय कर्म का क्षयोपशम का, क्षयोपशम की देन है। ये है, 15 मिनट हो गए।